हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेल, तारा ने अमन के कहने पर शहर के सभी बड़े व्यापारियों को शादी में आने का निमंत्रण दे दिया था, पर उससे पहले उसे शादी के छोटे छोटे फंक्शन जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत आदि करने थे। तारा काफी खुश थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि शादी से पहले वो अमित का सच अमन और अमरेंद्र जी को दिखा ही देगी, क्योंकि अमरेंद्र जी का व्यवहार देखकर वो समझ चुकी थी कि अगर उसने अमित के बारे में कुछ भी किसी से कहा तो अमरेंद्र जी उससे नाराज हो सकते थे। उससे नाराज भी हो सकते थे और तारा अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने सही मौके की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं काली शक्तियों का स्वामी अमित घर में आकर बहुत खुश था। उसने सोच लिया था कि जल्दी ही सफ़ेद जिन्नों का सफाया करके वो इस घर को अपने कब्जे में कर लेगा और हर तरह से इस दुनिया के साथ साथ कई दुनिया पर भी हुकूमत करेगा। इतना ही नहीं, अगर सफ़ेद जिन उसकी बादशाहत कबूल कर लेते तो वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता। काली शक्तियों के स्वामी अमित ने कुछ ही पल में बड़े बड़े सपने देख लिए थे। उसने सोच लिया था कि जैसे ही वो काली शक्तियों का महारक्षक बन जाएगा, सफ़ेद जिन्नों को जड़ से मिटा देगा और जो जिन उसकी गुलामी कबूल करेंगे केवल उन्हें ही वो जिंदा छोड़ेगा। बस इसके लिए उसे उस तिलस्मी पत्थर को हासिल करना था और जिन्नों के वंशज के पैदा होते ही उसका अंत करना था, क्योंकि जिन्नों के वंशज का अंत ही काली शक्तियों के स्वामी अमित को महारक्षक बना सकता था। तभी अमित ने देखा कि अमरेंद्र जी उसकी ओर आ रहे थे। तब अमित ने आंखों में आंसू लाकर कहा, क्या हुआ, आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या आपको कुछ काम था? तब अमरेंद्र जी ने अमित को जोरों से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। अमित हैरान था और साथ ही खुश भी, क्योंकि वो हमेशा से अमरेंद्र जी को रुलाना चाहता था, लेकिन आज उन्हें रोते हुए देखकर उसे अजीब सी ठंडक मिल रही थी। तभी अचानक जिन महाराज अमन ने अमित और अमरेंद्र जी को इस तरह गले मिलते हुए देखा तो अमन के दिल में कुछ अजीब सा हुआ, क्योंकि अमन ने भी अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के बगैर गुजारी थी, लेकिन उसके पिता के आने के बाद भी अमन को इतना लगाव नहीं दिखाया था जितना अमित को दिखा रहा था। अमन को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। वो ज्यादा देर उन्हें नहीं देख पाया और सीधा तारा के पास जाने लगा, क्योंकि अमन दिन पर दिन तारा के प्रति ज्यादा ही स्वामित्वपूर्ण होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर तारा सोनल के साथ व्यस्त थी और उसने हल्दी के फंक्शन में ही अमित की कुछ बुराइयां सबके सामने लाने का प्लान बनाया था, इसलिए उसने सोनल परी को समझाना शुरू कर दिया था कि उसे कैसे क्या करना है। लेकिन साथ ही उसने सोनल परी से कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा समय धरा के साथ गुजारे और उसके कमरे में रहे, क्योंकि तारा धरा की सच्चाई जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि धरा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो काली शक्तियों के स्वामी अमित के हाथ लग गई थी, क्योंकि पिछली बार जब तारा ने धरा की मदद की थी तब धरा ने खुद कहा था कि वो खुद को संभाल लेगी और उसने तारा को वहां से जाने के लिए कह दिया था, तो फिर अचानक क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि धरा अमित के चक्कर में फंस गई थी। वहीं मालिका अमन के घर के हर कोने को देख रही थी और हर चीज को इस हक से छू रही थी कि सब कुछ उसका है। वो किसी भी तरह से अमन के साथ रिश्ता बनाकर अपने जन्मों के प्यास बुझाना चाहती थी और अमन के शरीर का दीदार करना चाहती थी। सभी लोग अपने अपने प्लान के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच तारा ने सोच लिया था कि वो अमित की कमजोरी का पहले फायदा उठाएगी, क्योंकि तारा जानती थी कि खूबसूरत लड़कियां अमित की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। इसलिए उसने सोनल परी को समझा दिया था कि हल्दी के समय उसे सबसे पहले क्या करना है। वहीं दूसरी ओर अक्षत खुराना सोनल परी की खुशबू महसूस करने के बाद पूरी तरह से बेचैन हो उठा था। ना तो उसका घर में दिल लग रहा था, ना ही ऑफिस में। उसने सोनल परी का पता निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और जब उसे पता चला कि सोनल अमन के यहाँ काम कर रही है तो वो बहुत जलभुन उठा, इसलिए उसने सीधे अमन से मिलने का फैसला कर लिया था। वो अमन से कहना चाहता था कि वो सोनल को अपने यहाँ से निकाल दे, क्योंकि वो सोनल से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। अभी अक्षत कुछ सोच ही रहा था तभी उसे अपने फोन पर एक निमंत्रण कार्ड दिखाई दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि निमंत्रण कार्ड अमन के यहाँ से आया है, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और उसने सोच लिया कि उसे अब अमन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो सीधे शादी में जाकर सोनल को अपने साथ ले आएगा, तो वो बेसब्री से शादी के दिनों के पूरे होने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही अमित ने अमरेंद्र जी को शांत करते हुए कहा, क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको माफ कर चुका हूँ, आपको बार बार रोने की जरूरत नहीं है, अमित ने बड़ी बेरुखी से ये कहा। तब अमरेंद्र जी ने अमित की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटे, तुम इतनी बेरुखी क्यों हो रहे हो, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन 7 दिनों में मुझे पूरी तरह से कबूल कर लो, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। अमरेंद्र जी की बात सुनकर एक पल के लिए अमित को कुछ एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने मक्कारी से कहा, आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मैं आ गया। मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त अमन के लिए आया हूँ, लेकिन अब आपकी वजह से अमन के साथ मेरा रिश्ता भी बदल चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अमन से कैसे मिलूं, दोस्त बनकर या सौतेला भाई बनकर। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने अमरेंद्र जी को थोड़ा और दुत्कारते हुए अपने कमरे में चला गया। करिश्मा जी, जो ये सब देख रही थी, अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग रही थी। उन्हें अमरेंद्र जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उनके गुस्से का इंतहा हो गया, वो सीधे अमरेंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? आपको इतना टूटा हुआ देखकर मुझे कितनी मायूसी हो रही है। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती हूँ। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने बेटे अमित से मिले हैं, तो मेरे बेटे अमन का क्या? आप उससे भी दूर रहे हैं। आपने उसका बचपन नहीं देखा, ना ही उसके साथ समय बिताया, तो फिर आपको अब क्या हो गया है? तभी करिश्मा जी की बात सुनकर अमरेंद्र जी गुस्से से बोले, करिश्मा, तुम्हें यहाँ पर भी अमन और अमित में फर्क करने की क्या पड़ी हुई है? मैंने कहा ना, अमन मेरा बेटा है और मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अमित की बात अलग है। अमित को तो ये पता ही नहीं कि मैं उसका बाप हूँ। कम से कम अमन को तो पता था कि मैं उसका बाप हूँ और मैं उसके बचपन में उसके साथ था, लेकिन मैं अमित के साथ नहीं था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मेरे बच्चों के बीच मतभेद मत पैदा करो, और वो दोनों दोस्त हैं, उन्हें दोस्ती रहने दो, सौतेला भाई मत बनाओ। अमरेंद्र जी की बात सुनकर करिश्मा जी को बुरा लगा और वो कहने लगी, अमरेंद्र जी, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं आपको पहले जैसा देखना चाहती हूँ। आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं? आपको क्या हो गया है? मैं आपकी इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपको मेरी बात सुननी होगी। तब अमरेंद्र जी एक पल करिश्मा जी की ओर देखते हुए बोले, देखो करिश्मा, वक्त बदल चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें शोभा देता है। मैं जा रहा हूँ।
ऐसा कहकर वो वापस अपने कमरे में चले गए। तब करिश्मा जी गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी और बड़बड़ाने लगी, न जाने अब क्या बदल गया है? क्या ये नहीं बदला है? क्यों जिन कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा जवान ही रहते हैं? तो फिर ऐसा क्या वक्त बदल गया है? अगर हमारे बेटे और बहू हैं तो क्या हर्ज है? क्या हमें प्यार करने का हक नहीं है? करिश्मा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और अमरेंद्र जी का टूटा हुआ व्यवहार और अमित के साथ प्यार भरा बर्ताव उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वहीं अमन पिता को अमित के साथ देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था और सीधा तारा के पास चला गया। तारा उस वक्त सोनल परी से बात कर रही थी। अमन के कमरे में आने पर उसने तुरंत सोनल को वहां से जाने के लिए कह दिया और सोनल परी अपनी आंखों में शरारत के साथ तारा की ओर देखती हुई वहां से जाने लगी। तब तारा ने देखा कि अमन परेशान सा लग रहा है, तो वो थोड़ी हैरान हो गई और अमन की ओर देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? लेकिन अमन उस वक्त तारा को कुछ नहीं बताना चाहता था। उसने तुरंत तारा के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने पास कर लिया और कहने लगा, बस कुछ देर मुझे खुद को देखने दो। तुम्हारी ये खुशबू मैं अपने दिल में बसा लेना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। एक बार फिर अमन ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और तारा के गाल शर्म से लाल होने लगे। और जल्दी ही तारा को शर्माते हुए देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कराहट आ गई। जो थोड़ी देर पहले पिता को देखकर दर्द महसूस कर रहा था, उसका सारा दर्द गायब हो गया था। उसने अपने होठों से तारा के होठों को छू लिया और कहने लगा, तारा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा, मैं बस सारी जिंदगी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और मेरा कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है। अमन की बात सुनकर तारा हैरान हो गई और कहने लगी, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? और रही बात अमित की, तो वो केवल 6-7 दिनों के लिए यहाँ है और बहुत जल्द वो यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसके बाद आप उसके साथ जैसा बर्ताव करते आए हैं वैसा ही बर्ताव जारी रख सकते हैं। वो आपका दोस्त है और दोस्ती रहेगी। आपको उसे किसी और नज़रों से नहीं देखना चाहिए। तारा ने बात समझ ली थी और उसने अमन को समझा दिया, और तारा की बात सुनकर अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, वाकई तुम बहुत समझदार हो। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है मानो तुम इंसान हो ही नहीं।